नमस्कार भारत, तारीख 20 अप्रैल दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कनेल का ऐलान, पूंजीवाद की वापसी की चाह रखने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं।
Él sigue siendo nuestro primer secretario como el referente que es para cualquier comunista।
बिहार की राजधानी पटना में बकाया भुगतान को लेकर 1500 स्कूलों का कटा बिजली कनेक्शन, गर्मी से बेहाल छात्रों का शिकवा।
सरकार को बोलना चाहिए ना कि बिजली लगाना चाहिए, अगर उनको पढ़ाने का मन इतना ही पढ़ाना, उनको लाइन तो देना चाहिए ना, वो कैसे पढ़ेंगे।
और खास रिपोर्ट, जोधपुर का खेजड़ली क्यों बना हुआ है पर्यावरण प्रेमियों का तीर्थ स्थल।
खेजड़ली का महत्व है पर्यावरण का संरक्षण करना, मतलब हर तरह से पर्यावरण बचाना, इसमें चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें रोक सकता है। ट्रंप ने पिछले साल मई में जेम्स कोमी को पद से हटा दिया था। कोमी ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनके आवेशपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित कर सके। उन्होंने ट्रंप के व्यवहार से राष्ट्रीय मूल्यों, कानून के शासन और सच्चाई को पेश खतरों के लिए भी चिंता जाहिर की है। ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के बीच कथित संबंधों की जांच का नेतृत्व जेम्स कोमी ही कर रहे थे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जेम्स कोमी पर राजनीतिक पूर्वाग्रह रखने और कई बार झूठ बोलने के आरोप लगाए थे। बीबीसी से बातचीत में जेम्स कोमी ने कहा,
I think the way in which he acts, and especially his...
मुझे लगता है कि जिस तरह से वो काम करते हैं और खासकर नियमों, सच बोलने पर उनका नुकसानदेह प्रभाव से उनके नज़दीकी लोगों और संस्थानों की शाख पर धब्बा लगता है। उनके अंदर ये आदत है और मुझे लगता है कि उनका समर्थन करने वाले भी मानेंगे कि वो झूठ बोलते हैं, कई बार बड़ा झूठ बोलते हैं, और कई बार वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस पर विश्वास करें और इसे दोहराएं, और यही वो बात है जो किसी भी इंसान पर धब्बा लगाती है। सऊदी अरब से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक असीर प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। देश के दक्षिण में स्थित असीर प्रांत की सीमा यमन से लगी है। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक एक हमलावर मारा गया है और 2 अन्य को हिरासत में लिया गया है। सभी हमलावर सऊदी नागरिक हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस हमले का यमन और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष से कोई संबंध है या नहीं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियास कनेल ने अपने पहले भाषण में कहा है कि उनके नेतृत्व में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो देश में पूंजीवाद की वापसी चाहते हैं। डियास ने कहा है कि उनकी सरकार समाजवाद को और मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि वो 6 दशक पहले फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में हुई क्यूबा की साम्यवादी क्रांति की रक्षा करेंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कास्त्रो ही उनकी सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वहीं अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि उन्हें क्यूबा की सरकार के अपने दमनकारी एकाधिकार पर बने रहने से निराशा हुई है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ब्रिटेन में चल रहे कॉमनवेल्थ सम्मेलन को बीच में छोड़कर अपने देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए वापस लौट रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा से सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद की गई इस पहली विदेश यात्रा में रामाफोसा देश में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तर पश्चिमी प्रांत में चल रहे हिंसक प्रदर्शन बीते 2 दिनों में और खराब हुए हैं। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ साथ नौकरियों और बेहतर घरों की मांग कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध हैं, गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई है। रामाफोसा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस से भी सब्र से काम लेने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडी ग्यूलियानी राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत कानूनी टीम का हिस्सा होंगे। ट्रंप के चुनाव अभियान और रूस के बीच संभावित संबंधों की जांच देख रही वकीलों की टीम को मजबूत करने के लिए जिन 3 नए वकीलों को रखा गया है उनमें ग्यूलियानी भी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। उत्तर भारत के तमाम शहरों से तापमान के तेजी से ऊपर जाने की खबरें मिल रही हैं। हालांकि दिल्ली में आज की सुबह खुशनुमा है और इस वक्त तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस। ये बात अलग है कि राजधानी का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ ही दिखता है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है और ये स्थिति तमाम छात्रों के लिए मुश्किल की वजह बन गई है। लेकिन क्यों, ये हम आगे बताएंगे। उधर अमरीका में FBI के पूर्व डायरेक्टर जेम्स कोमी के बयान गर्मी बढ़ा रहे हैं। कोमी को बीते साल मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद से हटा दिया था। कोमी ने BBC Newsnight कार्यक्रम में ट्रंप के बर्ताव पर सवाल उठाए।
I wake up some mornings and read the president is demanding the jailing of private citizens, occasionally me.
कोमी कह रहे थे कि मुझे भरोसा है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो उनके आवेग भरे बर्ताव को रोक सके। हमारे राष्ट्रपति नागरिकों को जेल में डालने की बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र अमरीका में सामान्य बात नहीं है। वो नियम जो इस देश की मूल भावना है, ये उन पर हमला है। हम इसे लेकर चुप नहीं रह सकते। ये भी जाहिर है कि ट्रंप कोमी के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें झूठा बता चुके हैं। अमरीका की फिक्र क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगल डियास कनेल के बयानों से भी बढ़ती दिख रही है। कनेल की अगुवाई में क्यूबा में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई है, लेकिन देश की दिशा बदलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कनेल ने कहा है कि उनके नेतृत्व में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो देश में पूंजीवाद की वापसी चाहते हैं। अमरीका ने उनके बयान पर निराशा जाहिर की है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
Compañero diputado Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez.
क्यूबा की नेशनल असेंबली के नेता एस्तेबान लाजो हर्नांडेज देश के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल का स्वागत करते हुए कह रहे हैं, कॉमरेड डिप्टी मिगेल डियाज कनेल बर्मुडेज, इस पल के बाद से आप क्यूबा गणराज्य की मंत्रिपरिषद के नए राष्ट्रपति हैं। मैं आपको राष्ट्रपति पद संभालने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मिगेल डियाज कनेल के क्यूबा के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद क्यूबा में एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत हुई है। बीते 6 दशकों में यह पहली बार है जब कास्त्रो परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के हाथों में क्यूबा की सत्ता आई है। मिगेल डियाज कनेल निवर्तमान राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के दाहिने हाथ रहे हैं और माना जा रहा है कि अब भी सत्ता का केंद्र राउल कास्त्रो ही बने रहेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में ही डियाज ने कहा है कि कास्त्रो ही क्यूबा की क्रांति के नेता बने रहेंगे। उन्होंने कहा,
Él sigue siendo nuestro primer secretario como el referente que es para cualquier comunista y revolucionario cubano.
वो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने रहेंगे क्योंकि वो ही किसी भी क्यूबाई कम्युनिस्ट या क्रांति के संदर्भ का बिंदु हैं और क्योंकि क्यूबा को उनकी जरूरत है। वो क्रांतिकारी कार्यों के लिए सुझाव और विचार देते रहेंगे और हमारी कमियों या गलतियों के बारे में चेताते रहेंगे और हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। वो हमारे देश की ओर किसी भी आक्रामकता और साम्राज्यवाद का मुकाबला रणक्षेत्र में गोलियों से करने के लिए तैयार रहेंगे। वहीं डियाज के सत्ता संभालने के बाद क्यूबा की संसद में दिए अपने पहले भाषण में राउल कास्त्रो ने कहा है कि क्यूबा में समाजवाद और कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका बनी रहेगी। ये इस बात को स्पष्ट करने का सही समय है कि हमारा अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में समाजवाद के अटल चरित्र को बदलने का कोई इरादा नहीं है, ना ही संविधान के 5वें अनुच्छेद में स्थापित क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को बदलने का कोई इरादा है। कम्युनिस्ट पार्टी ही समाज का सर्वोच्च निर्देशक बल और व्यवस्थित अग्रदल बनी रहेगी। नए राष्ट्रपति डियाज ने भी कहा है कि उनके नेतृत्व में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो पूंजीवाद की ओर लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्यूबा में समाजवाद को और दृढ़ करने में लगी रहेगी। मिगेल डियाज कनेल ने ऐसे समय में क्यूबा की सत्ता संभाली है जब अमरीका से क्यूबा के संबंध हाल के सालों में अपने सबसे खराब दौर में हैं। क्यूबा के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति राउल कास्त्रो और अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच संबंध बेहतर हो रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। डियास के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और क्यूबा के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती भी होगी। सत्ता संभालने के पहले दिन ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश में मूलचूल बदलाव लाने का कोई इरादा नहीं है और क्यूबा अपने साम्यवादी सिद्धांतों पर अड़िग रहेगा।
क्यूबा के नए राष्ट्रपति के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन वो पुराने रास्ते पर ही चलेंगे। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। अगली खबर भारत से। कल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल जज ब्रज गोपाल हरिकिशन लोया की मौत की एसआईटी से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की, लेकिन लातूर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि वो लोया की मौत की जांच की मांग उठाते रहेंगे। पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता मानसी दास से।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल जज ब्रजगोपाल हरकिशन लोया की मौत की जांच स्पेशल जांच टीम से करवाने की मांग को खारिज कर दिया है। दिसंबर 2014 में जज पीएच लोया की नागपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो एक शादी में शामिल होने नागपुर गए थे। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सरकारी वकील निशांत काटनेश्वरकर ने बीबीसी को बताया,
फैसले से कोर्ट ने बेसिकली जजेस के स्टेटमेंट्स को बिलीव किया है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी की थी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, उसके ऊपर भी बिलीव किया है और अकॉर्डिंगली सारे पिटिशन पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के नेचर में जो थे सारे डिसमिस कर दिए। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने पब्लिक इन्वेस्टिगेशन का जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का ये कहना है कि आजकल पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ये केवल पॉलिटिकल सोर्स चेकिंग करने के लिए ही किए जाते हैं। पर्टिकुलरली इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ये वेस्टेड इन्वेस्टिगेशन था।
जज लोया सीबीआई कोर्ट के जज थे और सोहराबुद्दीन अनवर हुसैन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस हत्या के एक चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति भी दिसंबर 2006 में एक मुठभेड़ में मारे गए। सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसरबी की भी बाद में हत्या हो गई थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी आरोपी थे, जो उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। बाद में विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया था। लेकिन कुछ महीने पहले कारवां नाम की एक मैगजीन ने जज लोया पर खबर छापी, जिसमें जज लोया के परिवार ने मौत की परिस्थितियों, पोस्टमार्टम, आखिरी घंटे में मौजूद लोगों की उपस्थिति आदि पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जज लोया को घूस देने की कोशिश की गई थी और उनकी जान को खतरा था। महाराष्ट्र सरकार ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कारवां के कार्यकारी संपादक विनोद जोस ने सोशल मीडिया पर लिखा, कारवां ने इससे जुड़ी जो 22 कहानियां अब तक छापी हैं, वो उन पर दृढ़ हैं। ये कहानियां अपने आप में ही बातें बता रही हैं। हम पत्रकार के रूप में इस मामले पर सवाल पूछना जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जज लोया के दोस्त और लातूर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उदय गवारे ने बीबीसी से बात की।
हम सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक दिया है, उनका निकाल जो है, उसका निश्चित तौर से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग है, इसको फुल बेंच के सामने हम जाएंगे, गवर्नमेंट को हम हमारा मेमोरेंडम देंगे और इसकी जांच होनी चाहिए, यही मांग हम उठाते रहेंगे।
ये बात भी सच है कि आज से कुछ महीने पहले जज लोया के बेटे अनुज लोया मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि शुरुआत में उनके कुछ संदेह थे, लेकिन किसी पर उनका शक नहीं है और वो इस मामले की जांच नहीं चाहते।
No, like even they are clear with it. They had some suspicions because of emotional turmoil at that period.
लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा अब कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में कई सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं और जिनका उत्तर मिलना अभी बाकी है। इन अनसुलझे सवालों के उत्तर कभी मिल पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। अगली खबर बिहार से। जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया था, बिहार की राजधानी पटना में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। जिले के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ये स्थिति मुश्किल की वजह बन गई है और इसका कारण यह है कि पटना जिले में 1500 स्कूलों का बिजली कनेक्शन बिल न जमा करने के चलते काट दिया गया है। पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
यहां पे बहुत गर्मी लगती है, पंखा नहीं
चलता था, हम लोग का पसीना तब तक पीता कॉपी में चला जाता, हम लोग जो लिखते हैं ना पेंसिल से वो ही मिट जाता है।
शायद ही किसी राज्य की राजधानी में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को ये शिकायत हो जो छठी में पढ़ने वाली सोनी को है। सोनी पटना के राजकीय मध्य विद्यालय लोहानीपुर में पढ़ती हैं। 3 महीने पहले उनके स्कूल की बिजली काट दी गई। वजह ये कि बीते 3 साल से स्कूल का बिजली बिल नहीं भरा गया है। इसी स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक राजीव बताते हैं,
पेमेंट नहीं हो पाया है, पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली विभाग बिजली डिस्कनेक्ट कर दिया, पेमेंट अब होगा तो बिजली कनेक्शन मिलेगी।
4 कमरे वाले इस स्कूल में 2 कमरे अंधेरे में डूबे हैं। 1954 में स्थापित इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के छात्रों के गुस्से का आलम यह है कि 8वीं में पढ़ने वाली स्नेहा कहती है कि सरकार बिजली नहीं दे सकती तो स्कूल बंद कर दे।
सरकार को बोलना चाहिए ना कि बिजली लगाना चाहिए, अगर उनको पढ़ाने का मन इतना ही पढ़ाना, उनको लाइन तो देना चाहिए ना, वो कैसे पढ़ेंगे।
बिहार की राजधानी पटना में ये अकेला स्कूल नहीं है। 1949 में स्थापित बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की माने तो पटना जिले के कुल 3,200 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में से 1,500 स्कूल में बिजली काट दी गई है। गौरतलब है कि इन 1,500 स्कूल के पास ही अपना बिजली का कनेक्शन है और बाकी बचे 1,700 स्कूल जुगाड़ सिस्टम पर ली गई बिजली से चल रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव प्रेमचंद ने बीबीसी से बातचीत में बताया,
1,500 विद्यालय के पास अपना बिजली का कनेक्शन है, लेकिन इन विद्यालयों द्वारा भी पैसा समय पर नहीं जमा किए जाना, इनके बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति बाधित कर दी है। शेष जो बचे हुए विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के पास अपना कनेक्शन है ही नहीं।
वहीं इस मामले में सरकारी अधिकारी भी बेसहारा से लगते हैं। इस बाबत पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने बीबीसी से कहा कि जितना फंड सरकार से मिला उतना दे दिया गया है और बाकी का इंतजार है।
पैसा है तो नहीं, पैसा जितना आता है बिल पेमेंट चला जाता है। अब तो ड्यू है तो कितना है कि वो काटेगा, उसको तो पैसा चाहिए और हम जितना पैसा देंगे जितना हमको मिलेगा उतना हमने दिया।
बता दें बिजली के हालात सिर्फ पटना के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में ही खराब नहीं है बल्कि सूबे के कुल 72,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में ये बिजली संकट है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश शर्मा बताते हैं,
40,000 विद्यालयों में कनेक्शन नहीं है, 2 तरह के विद्यालय हैं। इलेक्शन के समय में इन कुछ विद्यालयों में कनेक्शन दिया गया, लेकिन पैसे नहीं दिए गए इसलिए तो काट दिया गया। 32 विद्यालय हैं, उनके विद्युत आपूर्ति के लिए कम से कम 1 अरब रुपया चाहिए था, मात्र 25 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, तो उसमें भी 14,000 जो विद्यालय है वो बिजली आपूर्ति का जो चार्ज था वो नहीं जमा होने के कारण उसका कट ऑफ कर दिया गया बिजली।
दिलचस्प है कि जहां बिजली उपलब्धता के सुधरते हालात को लेकर राज्य सरकार अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है, वहीं सरकार के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों से बिजली गायब है। साफ है कि सरकार का ध्यान धरातल पर स्थितियां सुधारने के बजाय अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ज्यादा है। सीटू तिवारी, बीबीसी पटना।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में बीते शुक्रवार को 2 नाबालिग दलित लड़कियों और 1 मुस्लिम लड़के के शव पेड़ से लटके पाए गए। स्थानीय पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया है, लेकिन लड़कियों के परिवार वाले अब कह रहे हैं कि उनकी बेटियों की हत्या हुई है। क्या है पूरा मामला, इसे जानने के लिए बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार बाड़मेर के उस गाँव तक पहुंचे। प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सुनिए नवीन नेगी से।
बच्ची को इतना आगे जोरदार करे वो चोर ले गया हमारे यहाँ।
देखिए नहीं आपका क्या हुआ क्या नहीं, घर हम उठाए ले गया आपने गया, आपको तो ध्यान नहीं है, मेरे पूरा जबरदस्ती ले गया।
बाड़मेर से करीब 100 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे सरूपे का तला गांव की ये महिला बीते 4 दिनों से रह रहकर अपनी सुध कुछ इसी तरह खो रही है। वो बार बार यही दोहराती है कि उनकी बेटियों को कोई घर से उठाकर ले गया और मार डाला। लेकिन ये दुख उनके अकेले का नहीं है, उनकी देवरानी का भी यही हाल है।
जो ऐसा ना मुसलमान वैसा नहीं होता ये गांव में, कोई गांव में वैसा नहीं होता, सरकार कोई ऐसा जो करे को साथ रहे को।
गरीब और दलित परिवारों की इन दोनों औरतों का दर्द एक सा है। शुक्रवार को गांव के बाहर जिन 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले थे वो दोनों एक परिवार के 2 भाइयों की बेटियां थीं। शांति और मधु नाम की इन लड़कियों के साथ गांव के मुस्लिम परिवार के लड़के देशल खान का शव भी पेड़ से लटका हुआ मिला था। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटियों की हत्या करके शव लटकाया गया है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया है। पुलिस के दावे के मुताबिक लड़के का एक ही साथ इन दोनों लड़कियों से अफेयर चल रहा था। सुनने में ये बात अटपटी भले ही लग रही हो, लेकिन पुलिस अब तक इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। एक साल पहले दोनों परिवारों में इस मामले में पंचायत भी हो चुकी है। मृतक लड़की के पिता भैराराम मेघवाल कहते हैं,
ये काफ़ी समय से हमारे मोहल्ले में इनकी शिकायत है, क्योंकि शराब वराब पीकर हमारे गलियों में रात बरात को यहाँ बैठते थे। तो हमने उनके घर वालों को कहा और गांव वाले जो भी मुखिया लोग हैं, सरपंच वगैरह, उनको भी हमने कहा था कि हमारी बच्चियां हैं जो बाहर निकलती है, पानी भरने जाती है, इधर उधर जाती है, तो उनको अश्लील हरकतें करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो आके हमें शिकायत देती थी। तो हमने उनको घर वालों को कह रखा था कि भाई ये बच्चे, इनको आप समझाओ।
उधर मृतक लड़के के पिता भी कहते हैं कि एक साल पहले उन्होंने अपने बेटे को समझाया था कि कुछ काम धंधा शुरू करो।
लड़के की सर जानकारी ऐसे पहले शुरू में एक 12 महीना से पहले यहाँ बताया ना जी के कही भाई लड़को अब भाई घरे घटी आए कौन।
अगर ये मामला पहले से चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों को फंदे से लटकना पड़ा? इसके जवाब में गांव तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इलाके के DSP सुरेंद्र प्रजापत बताते हैं,
अब तक की जांच में इन तीनों के द्वारा प्रेम प्रसंग का मसला सामने आया है, और इन तीनों का जो प्रेम प्रसंग का मसला है उसी के वशीभूत इन्होंने अपने आत्महत्या की है, कारित की है। सडन प्रोवोकिंग की जहां तक बात है कि इनका अफेयर 2.5 साल से चल रहा था या 1 साल पूर्व इनकी निगाह में आ गया था, पूरे गांव वाले जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, इन्होंने मिल बैठ करके आपस में बात भी की है कि बच्चे हैं, इनको एक बार नज़रअंदाज किया जाए, माफ़ किया जाए और इन पर निगाह रखी जाए, ध्यान रखा जाए। इसके बावजूद इनका प्रेम प्रसंग परवान चढ़ता रहा और उसकी परिणति ये आप देख रहे हैं।
दरअसल बाड़मेर के भारत पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों में सिंधी मुसलमानों का दबदबा है। इलाके की 2/3 आबादी मुसलमानों की है, दलितों को उनके ही खेतों में काम करना पड़ता है। लिहाजा इस हादसे को हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का रंग देने की कोशिश भी खूब हो रही है। कुछ दलितों के मुताबिक उनका गाँव तो मिनी पाकिस्तान बन चुका है।
ये गांव जो है छोटा पाकिस्तान है, जिसमें बड़ी बड़ी गैंग है, झगड़े करते रहते हैं हमेशा, काले कपड़े पहन के। कभी गांव में रात का 2 बजे 2:30 बजे घूमते हैं तो लोगों को कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, ये कहने में नहीं, इसकी छेड़छाड़ मत करो, आप मरोगे। तो कितनी बार उसने झगड़ा किया है, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है।
इस मामले में भी RSS वाले सक्रिय हुए हैं। बाड़मेर जिले के संघ के पदाधिकारी स्वरूप सिंह खारा ने परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।
तो ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है, और अगर हम बाकासर से लगाकर जैसलमेर जिले के लोंगे वाले तक गणना करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये जो दक्षिण के जितने 4-5 राज्य है, वहाँ की करीब 1000 युवतियाँ यहाँ सीमांत क्षेत्र में मुसलमानों के घर में है।
इलाके के दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वे किसी सिंधी मुसलमानों की हैसियत तक पहुंच पाएंगे। ऐसे में समय समय पर ऐसे मामलों का आना थमेगा, ये दावा भरोसे से नहीं किया जा सकता।
प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। आगे सुनवाएंगे राजस्थान से एक और खास रिपोर्ट, लेकिन पहले जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। दिलनवाज पाशा से,
जज लोया की मौत की जांच नहीं होगी, ये खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा ध्यान खींच रही है दैनिक जागरण की एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि कठुआ में बच्ची से बलात्कार ही नहीं हुआ था, और ये दावा पोस्टमार्टम रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। वात्सल्य, यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस गैंगरेप की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची है और देश भर में इसको लेकर के व्यापक प्रदर्शन।
लंदन में प्रधानमंत्री मोदी को भी विरोध का सामना करना पड़ा है इस मामले को लेकर।
जी बिल्कुल। एक और खबर, देश में 48 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे हैं, ये बता रहा है आज का अमर उजाला। और भारत की विदेश मंत्री पाकिस्तान से आई गीता के लिए वर तलाश रही हैं। गीता आपको याद होंगी, वही लड़की जो बोल नहीं सकती है, पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन उनको पाल रही थी और अब वो भारत में हैं। कल हमने एक खबर की थी कि BBC पर भी खबर थी, पंजाब से पाकिस्तान गई एक सिख महिला गायब हो गई हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस ने उस महिला की मां के हवाले से कहा है कि वो पाकिस्तान में लाहौर के एक व्यक्ति से उन्होंने शादी की है और ISI के जो ट्रैप में नहीं है, वो उनका कहना है।
दैनिक भास्कर में एक तस्वीर भी ध्यान खींच रही है दिलनवाज, पानी की पाइपलाइन फटने से DND पर 7 घंटे से ज्यादा जाम लगा रहा, और जाम की तस्वीर पहले पन्ने पर है।
और चलते चलते एक और खबर बताते हैं, एक CA ने करोड़ों की संपत्ति त्याग कर जैन संत बनने का जो है इरादा किया है, ये खबर आज अखबार में पहले पन्ने पर है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज। और अब एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर जिले का खिजड़ली पर्यावरण प्रेमियों के लिए तीर्थस्थल बन गया है। करीब 3 सदी पहले विश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने यहाँ पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इनमें सबसे आगे महिलाएं थीं। विश्नोई समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण की पुरानी परंपरा बचाए हुए हैं और शहादत देने वाले अपने पुरखों को याद करने के लिए हर साल समारोह आयोजित करते हैं। सुनिए नारायण बारेट की रिपोर्ट।
रेत के ऊंचे टीलों और दुश्वार जिंदगी के बीच जब कोई लोक गायक खेजरली के शहीदों की यशगाथा को स्वर देता है, लोग श्रद्धा से सर झुका लेते हैं। सहरा में वो मकाम वन्य जीवों और दरख्तों के लिए जान का नजराना पेश करने वालों की याद दिलाता है। यह कोई 288 साल पुरानी घटना है। रियासत का फरमान था खेजड़ी के दरख्त काटे जाएंगे। विश्नोई समाज ने इसका विरोध किया। पेड़ कटने लगे तो लोग दरख्तों के लिपट कर खड़े हो गए। जोधपुर के उप जिला प्रमुख गोपाराम विश्नोई बताते हैं, सबसे पहले अमृता देवी ने शहादत दी।
363 लोगों को शहीद हुए थे और ये 363 लोगों के ऊपर शहीद बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। महिलाएं थी, बच्चे भी थे। सबसे पहले महिला थी अमृता देवी, शुरू में ही उसने किया था। उस अमृता विश्नोई के घर के आगे पेड़ था और पहले उस पेड़ को काटने के लिए वो आए थे कि हम इस पेड़ को काटेंगे, पेड़ नहीं काटने देंगे, कि काटेंगे तो उसने उस पेड़ से चिपे की कि पहले मेरे को काटो फिर बाद में इस पेड़ को काटो। सबसे अगुवाई महिला ही थी। राजा ने अपना किला बनाने के लिए यहाँ से कभी यह पेड़ बहुत ज़्यादा है, खेजड़ी गांव है उसमें खेजड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। तब लोगों ने विरोध किया, भाई खेजड़ी हम नहीं काटने देंगे। बाद में राजा को पता पड़ा कि भाई वहाँ लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। फिर राजा यहाँ आया, उस राजा ने माफ़ी मांगी और क्या भाई जहाँ विष्णु रहता है वहाँ हम कोई पेड़ नहीं काटेंगे, न वन्य जीवों को मारेंगे। हमारे गुरु ने ये हमको संदेश दिया था और हमारे विष्णु के 29 नियम में ये लिखा हुआ है कि हरा पेड़ के लिए अगर गर्दन चली जाए तो भी हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए।
विश्नोई समाज के बद्री नारायण कहते हैं, कदाचित ये पहला चिपको आंदोलन था। खेजड़ली के जेताराम विश्नोई कहते हैं, हरे दरख्त की हिफाजत में जान भी चली जाए तो कम है।
के सिर साठ है रूं कर है तो भी सस्ता ना, मतलब एक पेड़ के लिए भी अगर सिर कट जाए तो वो सस्ता मानते हैं, तो जीव के लिए तो कितने भी मरे वो कम है, ये समझ। इससे बड़ा कुछ नहीं। शिकार की भनक पड़ते ही सोते आदमी अपनी नींद छोड़ के शिकारी की बंदूक की आवाज की तरफ भागते हैं, चाहे वहाँ वो मरते हों चाहे जीते हों। उस शिकारी को पकड़ने का उनका लक्ष्य होता है कि एन कैन प्रकैंड शिकारी पकड़ा जाए, और उसका नहीं पकड़ा जाए तो उनके पीछे मुकदमा वो दौड़े जाए जहाँ भी। खेजड़ी का महत्व है, पर्यावरण का संरक्षण करना ही मेन महत्व है, मतलब हर तरह से पर्यावरण बचाना इसमें, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, इसी का इसमें महत्व है। और इसमें हर साल मेला लगता है पर्यावरण का, भादवा दशम के दिन।
रेगिस्तान में उस मकाम पर शहीद स्मारक किसी प्रकृति के प्रहरी की तरह खड़ा नजर आता है। कांकाने के दिनेश विश्नोई स्मारक की महत्ता बयान करते हैं।
खेजड़ी स्मारक इसलिए बनाया गया कि यहाँ वन्य जीव और जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो सभी लोग, चाहे किसी भी धर्म या समाज क्यों ना वास्ता रखते हो, सब आए और एक साथ मिलकर के काम करें।
इन गांव में कहीं चिंकारा तो कहीं काले हिरण कुलांचे भरते मिलते हैं। शिकार की छोटी सी आहट पर ही ग्रामीण घरों से निकल पड़ते हैं।
जैसे ही कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कहीं शिकार हुआ है तो जिस हालत में वो बैठे रहते खड़े रहते हैं वहाँ, तो उसी हालत में वहाँ से निकल पड़ते हैं और शिकार रोकने का पूरा जो है प्रयास करते हैं। नंगे पैर चाहे किसी भी हालत में हो, अपना प्राण जाए लेकिन किसी वन्य जीव और पशु का प्राण नहीं जाए।
थार मरुस्थल के इन गाँव में इंसान की मौजूदगी वन्य प्राणियों में कोई भय पैदा नहीं करती है। इन गाँव में इंसानी आबादी ने वन्य जीवों के साथ मिलकर रेत पर मोहब्बत की एक मजबूत इबारत लिख छोड़ी है। नारायण बारेट, BBC, खेजड़ली, जोधपुर, राजस्थान।
चलते चलते मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी ने BBC से कहा है कि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें रोक सके। सऊदी अरब से आ रही मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक असीर प्रांत में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने अपने पहले भाषण में कहा है कि उनके नेतृत्व में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो देश में पूंजीवाद की वापसी चाहते हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। फेसबुक प्रसारण में मदद की अभिमन्यु कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है BBCHindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।